पुस्तक का नाम प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग, लेखक का नाम सत्य केतु विद्यालंकार, प्रकाशक श्री सरस्वती सदन, A1/32, सफदरगंज, इनकलेव, नई दिल्ली, नौवां संस्करण। प्रस्तावना। भारत के इतिहास में वैदिक युग का स्थान अत्यंत महत्व का है। इस देश के बहुसंख्यक निवासी ऐसे धर्मों एवं संप्रदायों के अनुयायी हैं जो अपने मंतव्यों, दार्शनिक सिद्धांतों, पूजा पाठ की विधि और आचरण के नियमों आदि के लिए वेदों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं और उन्हें प्रमाण रूप से स्वीकार करते हैं। भारत के इतिहास की यह अनुपम विशेषता है कि अत्यंत प्राचीन काल में वैदिक ऋषियों ने जिस संस्कृति का सूत्रपात किया था, हजारों साल बीत जाने पर भी वह अब तक कायम है। उसमें कुछ परिवर्तन अवश्य हुए हैं, पर उसके नैरंतर्य में कोई बाधा नहीं पड़ी है। संसार की अनेक प्राचीन सभ्यताएं अब नष्ट हो चुकी हैं। इजिप्त, बेबीलोनिया, किट, ग्रीस आदि की प्राचीन सभ्यताओं के अब केवल नाम ही शेष है। धर्म, भाषा, संस्कृति, सामाजिक जीवन आदि की दृष्टि से इजिप्ति के वर्तमान निवासियों का उन प्राचीन लोगों के साथ कोई संबंध नहीं है जिन्होंने कि नील नदी की घाटी में गगनचुंबी विशाल पिरामिडों का निर्माण किया था और जिन्होंने अपने पितरों के शरीर की मम्मी बनाकर उन्हें अमर जीवन प्रदान करने का प्रयत्न किया था। ग्रीस और रोम के प्राचीन निवासियों ने जिन धर्मों और सभ्यताओं का विकास किया था, वे अब विद्यमान नहीं हैं। जो विचारधारा प्राचीन ग्रीक तथा रोमन लोगों को देवी देवताओं की पूजा के लिए प्रेरित करती थी, ग्रीस और रोम के आधुनिक निवासियों के लिए उसका कोई अर्थ नहीं है। पर वर्तमान समय के भारत पर वैदिक युग की प्राचीन सभ्यता का प्रभाव भलीभांति विद्यमान है। इस देश के पंडित और पुरोहित धार्मिक कर्मकांड के लिए आज भी उन्हीं वेद मंत्रों का प्रयोग करते हैं जिनका निर्माण या दर्शन अत्यंत प्राचीन काल में वैदिक ऋषियों द्वारा किया गया था। उपनिषदों द्वारा आध्यात्म चिंतन की जिस लहर को प्रवाहित किया गया था, वह इस 20वीं सदी में भी इस देश के चिंतकों तथा साधु संतों को प्रेरणा प्रदान कर रही है। वर्णाश्रम व्यवस्था के रूप में समाज के संगठन का जो रूप वैदिक युग में विद्यमान था, उसका प्रभाव अब तक भी भारतीय समाज पर कायम है। धर्म, संस्कृति, भाषा, आचार विचार, चिंतन, समाज संगठन, जीवन के आदर्श आदि सभी बातों पर वैदिक युग की जो छाप वर्तमान भारत पर है, उसकी सत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। यही कारण है जो भारत की सभ्यता, संस्कृति और धर्म आदि में विकास तथा परिवर्तनों के होते हुए भी उनमें जो निरंतर्य बना रहा, उसे भलीभांति समझ सकना तभी संभव है जबकि वैदिक युग के इतिहास का गंभीर रूप से अनुशीलन कर लिया जाए। वस्तुतः वैदिक युग ही वह आधारशिला या नींव है जिस पर भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति की विशाल इमारत खड़ी है। पर वैदिक युग के इतिहास को लिखने में अनेक ऐसी कठिनाइयां हैं जिनकी ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक है। इस काल के इतिहास को तैयार करने का प्रधान साधन वैदिक साहित्य ही है, क्योंकि इस युग की पुरातत्व संबंधी सामग्री अभी उपलब्ध नहीं की जा सकी है। वैदिक साहित्य में प्रधान चार वैदिक संहिताएं हैं जिन्हें भारतीयों का एक बहुत बड़ा वर्ग अपौरुषेय, अनादि और ईश्वरकृत मानता है। जो ग्रंथ अनादि और ईश्वरकृत हों, उनका इतिहास के लिए उपयुक्त कर सकना संभव नहीं हो सकता। यही कारण है जो वर्तमान समय के बहुत से विद्वान यह स्वीकार करने को उद्यत नहीं हैं कि वेदों में ऐतिहासिक घटनाओं के कोई भी संकेत या विवरण विद्यमान है। गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों के हिमालय, मूजवंत सदृश पर्वतों के सहदेव, सोमक, संबरण, संतनु आदि राजाओं के और पक्त, अलीन, अदु, तुर्वस, अनु आदि जनों के जो नाम वेदों में आए हैं, ये विद्वान उनके अन्य प्रकार से अर्थ करते हैं और उन्हें नदियों, पर्वतों, राजाओं तथा जनों का सूचक स्वीकार नहीं करते। इसके विपरीत पाश्चात्य विद्वानों ने वैदिक संहिताओं का इतिहास के लिए प्रयोग किया है और उनके आधार पर दासराग युद्ध सदृश कितनी ही ऐतिहासिक घटनाओं का निरूपण किया है। वस्तुतः प्राचीन काल से ही वेदों के अर्थ निरूपण के संबंध में अनेक संप्रदाय रहे हैं। यास्क ने अपने निरुक्त में ऐतिहासिक संप्रदाय का भी उल्लेख किया है और उसके भी अनेक मंतव्य उद्धृत किए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में भी ऐसे विद्वानों की सत्ता थी जो ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी के लिए वेदों का उपयोग करते थे और वेदों में इतिहास की सत्ता को स्वीकार करते थे। सायनाचार, महीधर आदि वेद भाष्यकारों ने भी अनेक वेद मंत्रों का अर्थ इतिहासपरक रूप में किया है। पर आधुनिक युग के सबसे बड़े वैदिक विद्वान स्वामी दयानंद सरस्वती के मत में वेदों के शब्द रूढ़ी न होकर यौगिक हैं और इतिहास के प्रयोजन से वेद मंत्रों का उपयोग करना समुचित नहीं है। इस विषय में स्वामी दयानंद ने यास्क की नैरुक्त विधि को स्वीकार माना है। ऐतिहासिक पद्धति को नहीं, वेदों के सही सही अभिप्राय की व्याख्या के लिए यास्क और दयानंद का मत युक्ति संगत है या आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों और प्राचीन भारत के ऐतिहासिक संप्रदाय का मत, इस पर विचार विमर्श करना इस ग्रंथ का विषय नहीं है। वैदिक युग के राजनीतिक इतिहास के लिए इस ग्रंथ में हमने प्रधानतया पुराणों को आधार बनाया है, क्योंकि उनमें जो प्राचीन अनुश्रुति संकलित है वह वैदिक युग की ही है। पर साथ ही हमने उन ऐतिहासिक तथ्यों का भी उल्लेख किया है जिन्हें वैदिक संहिताओं के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है। पर ऐसा करते हुए हमने उन विद्वानों के मत भी दे दिए हैं जो वेदों में इतिहास को स्वीकार नहीं करते। ये विद्वान ऐसे वेद मंत्रों का जिनमें ऐतिहासिक घटनाओं के संकेतों की सत्ता कही जाती है किस ढंग से अर्थ करते हैं, इसके भी कुछ उदाहरण हमने दे दिए हैं। वैदिक युग के इतिहास के संबंध में दूसरी कठिनाई तिथि क्रम की है। भारतीय इतिहास के किस काल को वैदिक युग कहा जाए, यह प्रश्न भी विवादग्रस्त है। पुराणों में प्रतिपादित कालक्रम के अनुसार जो मन्वंतर इस समय चल रहा है उसका प्रारंभ वैवस्वत मनु से हुआ था। यह मनु ही वर्तमान मन्वंतर का पहला राजा था। इस मनु से शुरू कर महाभारत युद्ध के समय तक भारत के विविध राज्यों में जिन राजाओं ने शासन किया उनकी वंशावलियां पुराणों में विद्यमान है। इन राजाओं में कितने ही ऐसे हैं जिनकी गणना वैदिक ऋषियों में भी की गई है। वेदों के अनेक मंत्रों के ऋषि वैवस्वत मनु हैं और कुछ मंत्रों के देवापी जो राजा संतनु के भाई थे। पाश्चात्य विद्वान इन ऋषियों को वेद मंत्रों के रचयिता कहेंगे और वेदों को ईश्वर कृत मानने वाले विद्वान यह कहेंगे कि ये ऋषि वे हैं जिन्होंने कि वेद मंत्रों के वास्तविक अर्थ का दर्शन कर उनके तत्व का प्रतिपादन किया था और इस कारण जो मंत्र दृष्टा थे। यदि ऋषि से मंत्र दृष्टा अभिप्रेत हो तो भी यह स्वीकार करना होगा कि वैवस्वत मनु से देवापी व संतनु के समय तक ऐसे ऋषि होते रहे जिन्होंने कि वेद मंत्रों का दर्शन किया। अतः इन्हीं के समय वैवस्वत मनु से देवापी या महाभारत काल तक के समय को वैदिक युग कहना समुचित होगा। हमने वैदिक युग में इसी काल को अंतर्गत किया है। पर फिर प्रश्न उठता है कि यह युग अब से कितने वर्ष पूर्व था। महाभारत युद्ध के समय तक वैदिक युग का अंत हो चुका था। यह तो स्पष्ट ही है क्योंकि वैदिक ऋषियों की परंपरा प्रायः देवापी के साथ समाप्त हो जाती है। पर समस्या यह है कि महाभारत युद्ध का समय कौन सा माना जाए, यह प्रश्न भी बहुत विवादग्रस्त है। भारत की प्राचीन परंपरा तथा भारतीय ज्योतिषों के अनुसार महाभारत का समय अब से 5000 वर्ष के लगभग पहले 3102 ईस्वी पूर्व था। पर आधुनिक विद्वानों ने उसका समय 1400 ईसा पूर्व या इसके भी बाद प्रतिपादित किया है। इस ग्रंथ में हमने तिथि क्रम की समस्या पर विचार विमर्श कर किसी निर्णय पर पहुंचने का प्रयत्न नहीं किया। हमने यही उचित समझा कि इस संबंध में जो भी विविध मत हैं उनका उल्लेख कर दिया जाए। वस्तुतः किसी भी इतिहास लेखक के लिए यह सुगम नहीं है कि वह आधुनिक युग के विद्वानों के तिथि क्रम संबंधी मंतव्यों तथा उन द्वारा प्रतिपादित विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यों की पूर्णता उपेक्षा कर सके। आर्य समाज की प्रसिद्ध शिक्षा संस्था गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की ओर से गुरुकुल पुरातत्व संग्रहालय की जो मार्ग निर्देशिका तत्कालीन कुलपति श्री रघुवीर सिंह शास्त्री के संदेश के साथ 1973 में प्रकाशित हुई थी, उसमें ऋग्वेद का काल 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया है, जो आधुनिक विद्वानों के मत के अनुसार है। भारत के परंपरागत मंतव्य तथा स्वामी दयानंद सरस्वती के मत की तुलना में केवल पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित मत का ही उल्लेख किया जाना गुरुकुल के विद्वानों द्वारा उपयुक्त समझा गया। पर हमने इस ग्रंथ में प्राचीन तथा आधुनिक और प्राच्य तथा पाश्चात्य सब विद्वानों के मंतव्य साथ साथ दिए हैं, ताकि पाठकों को उन सब से परिचय प्राप्त हो जाए और वे विविध मतों की समीक्षा करके स्वयं किसी परिणाम पर पहुंचने में समर्थ हो सकें। इस ग्रंथ के बहुत से पाठक ऐसे भी होंगे जो संस्कृत भाषा से भली भांति परिचित होंगे। उनके लाभ के लिए उन वेद मंत्रों तथा ब्राह्मण ग्रंथों आदि के उन संदर्भों को भी फुट नोट में दिया गया है जिनके आधार पर कोई तथ्य प्रतिपादित किया गया है। पुस्तक का आकार अधिक न बढ़ने पाए इस दृष्टि से अनेक स्थलों पर वेद मंत्र आदि की केवल प्रतीक ही दे दी गई है। विज्ञ पाठक प्रतीक देखकर मूल संदर्भ को सुगमता से ढूंढ सकते हैं। वैदिक युग के इतिहास पर अन्य भी अनेक पुस्तकें गत वर्षों में हिंदी में प्रकाशित हुई हैं, पर उनमें प्रायः उन्हीं मंतव्यों को लेखित किया गया है जिनका प्रतिपादन पाश्चात्य विद्वानों ने किया है। पर मैंने इस ग्रंथ में भारतीय विद्वानों के मतों का भी निर्देश कर दिया है, जिससे वैदिक युग के संबंध में पाठक उन मतों से भी परिचित हो सकेंगे जो भारत के परंपरागत विश्वासों के अनुरूप हैं। सत्य केतु विद्यालंकार। विषय सूची। पहला अध्याय विषय प्रवेश। पहला, वैदिक युग का अभिप्राय। वेदों की अपौरुषेयता एवं अनादित्व। वेदों के ऋषियों का अभिप्राय। मंत्रों के रचयिता या दृष्टा। वैदिक ऋषि और पौराणिक अनुश्रुति। पौराणिक अनुश्रुति के राजाओं का वेद मंत्रों का ऋषि भी होना। वैवस्वत मनु से प्रारंभ कर महाभारत युद्ध तक का काल वैदिक युग है। दूसरा, वैदिक संहिताओं का इतिहास के लिए प्रयोग। वेद मंत्रों में ऐतिहासिक घटनाओं के संकेत, सहदेव्य सोमक संवरण, सुदास आदि के उल्लेख, दासराग युग, राजा अभ्यावर्ती राजाओं के दान को स्तुति, वेदों में इतिहास के संबंध में प्राचीन आचार्यों के मंतव्य, ऐतिहासिक और नैरुक्त संप्रदाय में मतभेद, आधुनिक विद्वानों का मत। तीसरा, वैदिक युग के इतिहास की सामग्री। वैदिक और पौराणिक साहित्य। पौराणिक अनुश्रुति की प्राचीनता और वैदिक युग के राजनीतिक इतिहास के लिए इसका उपयोग। पुरातत्व संबंधी सामग्री। दूसरा अध्याय।